स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग प्रवचन के इस चार दिवसीय तात्कालिक सत्र में नरहरि स्वामी द्वारा विरचित एक ग्रंथ है बोध सार, ज्ञान का सारा निचोड़ है। ग्रंथ तो बहुत मोटा है, आपके सामने दिख ही रहा है, लेकिन इसी ग्रंथ का एक अध्याय है उपदेश षोडशी। उस उपदेश षोडशी, उपदेश के जो 16 मंत्र हैं, उन 16 मंत्रों का हम विचार कर रहे हैं। विचार के क्रम में यही निश्चय किया गया कि दुखों का और जन्म का सारा हेतु कामनाएं ही हैं। कामना के कारण ही व्यक्ति एक योनि से दूसरी योनि में, दूसरी योनि से तीसरी योनि में भटकता रहता है। और जब तक भीतर एक भी कामना बनी रहेगी तब तक उसको सुख की उपलब्धि हो नहीं पाती। आप लोग खुद देखते होंगे जीवन के अनुभव में, एक विचार बहुत गहराई से चल रहा हो, चाहे घर में किसी की शादी का विचार हो, अथवा किसी ने आपको गाली दे दिया हो उससे बदला लेने का विचार हो, अथवा किसी कार्य के लिए पैसा इकट्ठा करने का विचार हो, तो रात भर आपको क्या नींद आती है क्या? जब एक विचार आपको रात भर सोने नहीं देता है, अशांत कर देता है, तो जिसके भीतर विचारों का ढेर ही भरा हुआ हो, बताओ उसको शांति की प्राप्ति हो सकती है क्या? इसी कारण से आज अनिद्रा की बीमारी हो गई है। कौन बीमारी? अनिद्रा, नींद नहीं आता। बच्चों में सामान्य नींद आ जाती है, कब सो जाते हैं उनको पता चलता ही नहीं है। और जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं, वासनाएं बढ़ती चली जाती हैं, वैसे उसकी नींद भी गायब होती चली जाती है। और संसार का सारा विषय भोग होवे लेकिन व्यक्ति के जीवन में नींद ही न होवे तो क्या करोगे विषय भोगों का? हम कहते हैं जिसको नींद आती है ना बड़ा खुश नसीब है, और ये बताओ जिसको नींद आती है ना वो थोड़ा संसार, क्या बताऊं, जिसको नींद आती है वो संसार की ज्यादा फिक्र नहीं करता, फिक्र नहीं करता। यदि संसार की बहुत ज्यादा चिंता हो गई ना तो उसको नींद आना ही पहले एक वो पहचान है, उसको नींद आना ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए नींद आ रहे है ये, इसे तो आप निश्चिंत हो, इसका मतलब आप क्या हो, निश्चिंत हो। भाई युक्तियों के द्वारा अपने मन रूपी घड़े में बैठी इन सारी कामनाओं को तुम दूर करो। जैसे कामनाएं दूर हो जाएंगी तो शांति पाने के लिए, सुख पाने के लिए तुम्हें कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुख और शांति तो स्वतः उपलब्ध हो ही जाएगी। तो इसी से यह निश्चय हुआ कि सारी दुखों की जड़ यह कौन है? चाह है। चाह मिट्टी नहीं, चाह गई, चिंता मिट्टी। चाह मैंने चाय न समझ लेना, लेकिन गांव में चाह बोलते हैं चाय को। चाह गई चिंता मिट्टी, ऐसा नहीं। क्या है? चाह नहीं, चाह क्या है? मिट्टी नहीं, चाह गई चिंता मिट्टी। आपकी जैसे इच्छाएं कामनाएं समाप्त हो गई आप निश्चिंत हो जाओगे। अब मनवा बेपरवाह, अब मन आपका क्या हो जाएगा? मस्त हो जाएगा एकदम आनंद। जहां रहोगे वहां ही आप आनंदित रहोगे। हमको कछु नहीं चाहिए। और फिर आपके भीतर जब चाह ही मिट गई, कुछ पाने की इच्छा समाप्त हो गई, तो आपको कुछ चाहिए नहीं। जो मिल जाए ईश्वर की इच्छा। हम तो हैं सहन शाह, आपके भीतर जो दीनता है वह दीनता समाप्त हो जाएगी। इसलिए हे मेरे बुद्धिमान साधकों, तुम लोग इस चिंता को छोड़ो और निश्चिंतता का मजा लो, निश्चिंतता का आनंद लो, क्योंकि इस चिंता को आपने ही इकट्ठा किया हो तो दूर भी किसको करना पड़ेगा, आपने ही अपनी कमाई से इसको इकट्ठा किया है तो दूर करने के लिए हम उपाय तो बता सकते हैं, लेकिन उस चिंता को हटाने में उद्यम परिश्रम आपको ही करना पड़ेगा। महाराज जी कैसे हटावे, हटाने के कई तरीके बताए, लेकिन सबसे बढ़िया चिंतन है इन सांसारिक चिंतनों से हट करके मन को एक आलंबन दे दो। किसका आलंबन दे दो? ब्रह्म का आलंबन दे दो। जैसे कल ही बता रहा था, कोई व्यक्ति गलत आचरण वाला हो, जुआ खेलता हो, लापरवाह हो, कोई काम न करता हो, कोई जिम्मेदारी न निर्वाह करता हो, तो गांव वाले लोग कहते थे इसकी शादी करा दो अपने आप सुधर जाएगा। ऐसा है नियम? नहीं भाई, गांव में तो नियम है, शहर में पता नहीं। तो अब सारी चिंताएं उसकी बीवी के पालन पोषण उसको उसी तक सीमित हो जाएंगी। दुनिया के अन्य दोस्त जो दिन भर घर से बाहर ही रहा करता था, आता नहीं था, वो सारी उसकी बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इन सारी चिंताओं से एक बड़ी चिंता पकड़ा दिया। कौन सी चिंता? उस पत्नी रूपी चिंता। तो यहां पत्नी को नहीं पकड़ाना है, वो जो महाप्रियतम है, कौन है? पत्नी से भी जो प्रियतम है वह कौन है? ब्रह्म, आपकी अपना स्वरूप। उस स्वरूप को पकड़ा दो, तो उस स्वरूप के पकड़ा देने से संसार की सारी चिंताएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। अथवा हे मेरे साधकों, हे मेरे शिष्यों, जिस वस्तु के संग्रह से तुम्हें चिंता होती है, जिस वस्तु के संग्रह से तुम्हें बीमारी होती है, उस वस्तु को ही छोड़ दो। भाई जो वस्तु आपके अनुकूल है, हर व्यक्ति के चिंता के विषय अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति के चिंता के विषय क्या है? कोई व्यक्ति किसी वस्तु के साथ निश्चिंत रह सकता है, कोई व्यक्ति एक वस्तु के साथ जो व्यक्ति निश्चिंत रहता है उसी वस्तु के साथ दूसरा व्यक्ति चिंता से युक्त रहता है। तो जिसके भीतर का जो रोग होवे, उस रोग को पैदा करने वाले उस वस्तु का ही त्याग कर देवे। महाराज जी त्याग न करें तो काम नहीं चलेगा क्या? कहते नहीं चलने वाला है, क्योंकि उसको जितना पोषित करोगे, यह अमर बेल की लताओं की तरह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। कभी देखा लताएं, लता पीपल का बरगद का पेड़ तो बहुत धीमी धीमी गति से बढ़ता है, और जो लते होते हैं ना, लता बेल क्या बोलते हैं, बेल, ये बेल नहीं, हाँ बेल ही बोलते ना, तो वो बेल आज इतनी बड़ी है, कल इतनी बड़ी हो जाएगी, परसों इतनी बड़ी हो जाएगी, बहुत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। तो ये चिंता बढ़ने से हमेशा बढ़ती जाती है, इसको त्याग दो तो तुरंत ही नष्ट भी हो जाती हो। इस तरह से जब इसका स्वभाव है तब भी व्यक्ति इस चिंता को छोड़ता नहीं है, और जितनी बेल बढ़ती जाती है उतना ही वह व्यक्ति संसार में उलझता चला जाता है। कभी देखना बेल कभी किसी पे फैल जाए तो उस बेल में फंसी हुई चीज को निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है, यूं स्प्रिंग की तरह फंसाती चली जाती है आगे 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 आगे, तो अमर बेल, हाँ वही अमर बेल स्प्रिंग की तरह इसको पकड़ेगी, फिर दूसरे को पकड़ेगी, फिर तीसरे को पकड़ेगी। ऐसे ही चिंता कभी धन को, कभी पत्नी को, कभी पुत्र को, कभी समाज को, कभी मान सम्मान को, कभी न जाने व्यक्ति कहाँ कहाँ किस किस चीजों में उलझा हुआ है। इतने ही नहीं, किसी ने शराब को पकड़ लिया है, किसी ने भांग को पकड़ लिया है, किसी ने तम्बाकू को पकड़ लिया है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उलझता ही चला जाता है। इसलिए इस कामना के उद्भूत होते ही कामना के इस अंकुर को ही तोड़ दो, और जैसे इस कामना का अंकुर टूटेगा तो कामना की बेल बन करके आपको संसार में उलझाएगी नहीं। कामराज इसके साथ भी रह ले, में रह लो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत कर्कश है, कलह करने वाली है, जीवन को समाप्त करने वाली होती है, कभी आपने बेलों को देखा होगा, यदि फंस गई गले में लग गई तो पूरा गला भी, आपने देखा या नहीं देखा है, किसी पेड़ की डाल में यदि बेल चिपक गई तो इतनी चिपक जाती है कि इधर पेड़ मोटा हो जाएगा, इधर पेड़ मोटा हो जाएगा, अब बीच में उसका गला पतला हो जाएगा। कभी देखा है आपने, इतनी मजबूत छोटी सी बेल इतने मोटे पेड़ को भी कमजोर करने में कई कई तो बेल ऐसी होती हैं पेड़ को इतनी गहराई से ढक लेती हैं कि पूरा पेड़ को ही सुखा डालती हैं, पूरे पेड़ को ही सुखा डालती हैं। तो भाई वह मारिका भी है, कौन सी बेल? कामना रूपी बेल, कामना रूपी बेल वह अमंगल है, इसलिए इस कामना चंडी को छोड़ो और मुक्ति रूपी सुंदरी का आप भोग भोगो। अरे लोग आपको झूठे का पंडित बोल देवे, झूठे का आत्मज्ञानी बोल देवे, अरे आप तो सिद्ध महापुरुष हैं, आप तो आत्मज्ञानी हैं, आप तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, आप तो बड़े विरक्त हैं, अरे आप तो संसार से असंग हैं, झूठे बोल देवे तो भी आपको अंदर क्या होती है, बड़ी एक प्रसन्नता होती है। सचमुच आप में ये संगता आ गई, सचमुच यदि आप में वह आत्मज्ञान आ गया तो आपको कितना आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए आप सचमुच के पंडित बन जाओ, सचमुच के आत्मज्ञानी बन जाओ। कल इस विषय में दृष्टांत भी दिए थे कबीरदास जी का, कि एक चोर गया भाग करके, कहा महाराज जी बचाओ, महाराज इसको लाल वस्त्र यूं पहना दिया। आज ऐसे ही लाल वस्त्र पहना है, पुलिस वाला ढूंढते हुए आ गया तो कहा भाई यहां कोई चोर आया क्या? यहां तो चोर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, साधु महात्मा जाके देख लो ना, तुम चोर नहीं जाके देख लो ना। तो वहां गए देखे, जितने लोग थे सब लाल लाल कपड़ा पहने हुए थे, उस सिपाही ने सबको क्या किया, नमस्कार किया और चला गया। अब उस चोर के मन में एक बात आ गई, यदि मैं नकली का चोर बन ओ साधु बन गया तो भी लोगों ने इतना सम्मान किया, जिसके चक्कर में मैं भाग रहा था उसी व्यक्ति ने भी प्रणाम किया, यदि मैं असली का साधु बन जाऊं तो क्या यमराज के फंदे से हम नहीं बच सकते क्या? यमराज के फंदे से बच ही जाएंगे, इसलिए क्यों ना हम असली का साधु बन जाएं। सच बताऊं हम असली के ही हैं, साधु हम क्या हैं? असली के ही हैं, लेकिन हम अपनी असली साधु रूपता को भूल गए हैं और लोगों के कहने से हम अपने आप को क्या मान बैठे हैं? चोर मान बैठे हैं। लोगों के समझाने से, लोगों के कहने से हमारे भीतर राग द्वेष विषयों का आकर्षण आ चुका है, लेकिन स्वभावतः देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए हम पूरी तरह से असंग है, हमारी सबके भीतर एक दृष्टि है। एक बच्चा पैदा होता है, बताओ उसके मन में उस बच्चे के प्रति किसी के प्रति राग द्वेष होता है क्या? वही बच्चा यदि मेरी भी गोदी में आ जाएगा तो मेरे से डरेगा क्या? लेकिन जैसे ही वह बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, आप लोगों ने समझा दिया, बाबा आएगा झोली में ले जाएगा, पकड़ लेगा, दूध पीता है नहीं पीता है? अरे माताएं पता नहीं बाबाओं का इस्तेमाल दूध पीने के लिए भी कर देती हैं, बाबा आएगा पकड़ ले जाएगा, नहीं दूध पी ले चुपचाप। एक बार ऐसे में किसी घर का महाराज आप बैठे रहो, हमारा बच्चा दूध नहीं पी रहा है, आप बैठे रहोगे तो दूध पी लेगा डर के मारे। अब बताओ बाबाओं का इस्तेमाल डरवाने में लोग करने लगे हैं, अब बताओ वह बच्चा जिंदगी भर क्या कभी किसी महात्मा के पास जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि बचपन से जो भय की वृत्ति उसके भीतर आपने डाल दिया है, जो द्वेष की वृत्ति आपने डाल दिया है, वह द्वेष की वृत्ति जो बचपन में डाली गई है वह जल्दी समाप्त होने वाली है ही नहीं। वह जब बच्चा पैदा हुआ था तो कितना निर्मल था, बता, बच्चे का सोना देखो, बच्चे का जगना देखो, बच्चे की आंखें देखो, किसी के मन में जरा सा भी राग द्वेष है ही नहीं, बड़ी शांति से सोता था, उसका सोना तो एक समाधि थी। लेकिन जैसे हम कामनाओं के वशीभूत होते गए, जैसे मेरा तेरा करते गए, वैसे हम चोर बनते गए, चोर माने हम परिच्छिन्न बनते गए, हमारी धीरे धीरे व्यापकता समाप्त होती चली गई। तो आप अपने मूल स्वरूप को पहचानो, आप चोर नहीं हो, आप शुद्ध क्या हो? साधु ही हो, असंग ब्रह्म ही थे, लेकिन धीरे धीरे देहाध्यास डाल डाल करके लोगों ने मुझे मनुष्य बना दिया, स्त्री बना दिया, पुरुष बना दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। नहीं देखो, एक छोटा बच्चा है, उसके मन में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कोई भेद है क्या? स्कूल में देखो सारे बच्चे, हम तो यहां तक देखे हैं कितने मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई भी सब खेलते हैं और सब एक दूसरे पे कमेंट भी कसते हैं, लेकिन कोई किसी की बात का बुरा मानता ही नहीं है, क्योंकि अभी उनके मन में ऐसी भावनाएं मजबूती से बैठी नहीं है। लेकिन जैसे यह भावना मजबूती से बैठ गई, वैसे वह व्यक्ति राग द्वेष करना शुरू करेगा, एक दूसरे से लगना झगड़ना शुरू कर देगा। तो आप क्या हो? शुद्ध ब्राह्म ही हो, साधु ही हो, लेकिन लोगों से, लोगों के द्वारा बताए जाने पर हम अपने स्वरूप को क्या किए? भूल गए, और हम तो थे कुछ, अपने आप को मान बैठे कुछ का कुछ, और कुछ का कुछ मान बैठे, और फिर उसी के अनुसार हम काम करना शुरू कर दिए हैं। मेरा रूप क्या है ये तो पहचान कराओ। तो तीन श्लोक हैं जो आपके रूप की पहचान करा रहे हैं। नित्यम एव स्फुरद रूपो ननु त्वम चित स्वरूपतः स्फूर्त मूर्ते तव एव इयम काचित स्फूर्तिरिदम जगत। चित स्वरूपतः हे शिष्य, तुम चैतन्य स्वरूप हो, यह सारा का सारा संसार जड़ है। क्या है? सारा का सारा संसार जड़ है। जड़ में स्वतः कोई क्रिया हो नहीं सकती। हो सकती? बताओ, ये फूल मान लो यहां रखा हुआ है, यह फूल अपने आप क्या यहां से यहां आ सकता है क्या? जब तक इसको किसी चैतन्य का आश्रय न मिले, उसी प्रकार से हम क्या हैं? त्वम चित स्वरूपतः, तुम्हारा जो स्वरूप है वह कैसा है? चैतन्य स्वरूप है। लेकिन तुम तो चैतन्य स्वरूप हो, चैतन्य स्वरूप होते हुए भी तुम अपने आप को जड़ मान बैठे हो। इस शरीर से अध्यास करके तुम अपने आप को क्या मान बैठे हो? शरीर मान बैठे हो। शरीर का धर्म काला गोरा, शरीर का धर्म मोटा और पतला, और फिर शरीर में और अध्यारोपित, मैं ब्राह्मण हूं। हमसे लोग, कई लोग कहते हैं, महाराज जी आपका दूध क्या है? महात्माओं की भाषा है, महात्माओं से नहीं पूछा जाता जाति क्या है। कहते न जात न पूछो साधु को, अब पूछ लीजिए ज्ञान। अब बात न, क्या है? हाँ, बात म्यान की बात नहीं करना है, बात किसकी करना है? तलवार की। लेकिन अब बाबाओं में भी कोई न कोई जाति का संस्कार तो भरा ही पड़ा है। अब कुछ तो ऐसे होते हैं नाराज हो, जैसे दंडी स्वामी आदि में ब्राह्मणत्व का इतना ज्यादा अभिमान होता है कि आप कुछ कल्पना कर ही नहीं सकते हो। तो सीधे नहीं पूछेंगे जाति, महाराज जी आपका दूध क्या है? हमका दूध तो सबका एक ही जैसा होता है भाई, है नहीं? चाहे गाय हो, गाय में कौन सी गाय कहोगे? ब्राह्मण गाय है कि क्षत्रिय गाय है कि वैश्य गाय है कि शूद्र गाय है? गाय कौन सी है? सबका दूध क्या होगा? दूध की भी कोई जाति होती क्या? ऐसे दूध की भी कोई जाति होती क्या? लेकिन लोगों के पूछने के अपने अपने क्या हो गए हैं? एक तरीके हो गए हैं। तो भाई जाति भी किसके अधीन है? आपके कर्म के अधीन है जाति। उसे परमात्मा किसी की कोई जाति है ही नहीं। लेकिन हम श्रुति के इस वाक्य को भी नहीं समझते हैं। लोग कहते हैं मनु आदि, मनु आदि, मनु आदि। अरे मनु ने कभी कहा है क्या जाति ऐसी होती है? मनु ने सीधे कहा है जन्मना जायते शूद्र। हर व्यक्ति जन्म से क्या पैदा होता है? शूद्र ही पैदा होता है। ये मनु का वचन है। मनु ने जाति का विभाजन कहीं नहीं कहा है कि ब्राह्मण से पैदा हुआ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय से पैदा हुआ तो क्षत्रिय, वैश्य से पैदा हुआ तो वैश्य, ऐसा कहीं नहीं कहा है। मनु जी महाराज का ये मनुस्मृति का श्लोक है कि जन्मना जायते शूद्र। जन्म से हर व्यक्ति क्या होता है? शूद्र ही पैदा होता है। जैसे ब्राह्मण पैदा होगा जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से, उसी प्रक्रिया से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उसी प्रोसेस से पशु पक्षी भी सब पैदा होते हैं। मैथुन धर्म आदि के द्वारा सभी तो पैदा होते हैं। इन कर्मणा द्विज उच्चते, जिस व्यक्ति ने कर्म अच्छे किए हैं वह व्यक्ति क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। शूद्रत्व से वह दूसरे जन्म पैदा हो जाएगा। कौन से जन्म पैदा हो जाएगा? द्विज माने दूसरा जन्म। दूसरा जन्म माने शूद्रपन को छोड़ करके अब या तो ब्राह्मण बन जाएगा अथवा कौन सी योनि में चला जाएगा? क्षत्रियत्व योनि में चला जाएगा अथवा वैश्यत्व योनि में चला जाएगा। ये उसका दूसरा जन्म है। लेकिन यह दूसरा जन्म कौन पैदा करता है? कर्मणा। व्यक्ति यदि शक्ति प्रधान हो गया, शक्ति को महत्व दे दिया, तो जो भी जहां पैदा हुआ होगा वह व्यक्ति जो शक्ति प्रधान होगा वह क्षत्रिय हो जाएगा। जो व्यक्ति क्या होगा? बुद्धि प्रधान हो जाएगा, वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? बुद्धि प्रधान व्यक्ति ब्राह्मण हो जाएगा। और यदि धन प्रधान अर्थ प्रधान व्यक्ति हो गया तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? और ये देखना है, वहां भी कोई बड़ा है कोई छोटा है ये नहीं बताया गया है, क्योंकि समाज के लिए तीनों की अहम आवश्यकता है कि नहीं है। अच्छा, अर्थ न होवे तो बताओ विकास की कोई गति इस समाज में हो सकती है क्या? अब बुद्धि न होवे तो भी क्या कुछ हो सकता है क्या? अथवा शक्ति भी न होवे तो क्या कोई व्यक्ति कुछ काम कर सकता है क्या? भाई सुरक्षा व्यवस्था न होवे देश में तो आप गुलाम हो जाओगे? नहीं गुलाम हो जाओगे। अब गुलाम हो जाओगे तो आप न बुद्धि का उपयोग करोगे न धन का उपयोग करोगे। इसलिए समाज में तीनों की आवश्यकता है। किसकी? किसकी? अक्ल की भी आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है और अर्थ की भी आवश्यकता है। तो आप बाद में क्या बन जाना? द्विज बन जाना है। लेकिन कैसे द्विज बनना है? कर्मणा द्विज उच्चते। कर्म से व्यक्ति द्विजत्व की प्राप्ति होता है। वेदाध्यायी भवेत विप्रह। जो वेद का अध्ययन करना शुरू कर देवे, जो सत्संग में आना शुरू कर देवे, वह सबके सब विप्र हो जाता है। वेदाध्यायी भवेत विप्रह। जो वेद का अध्ययन करे, सत्संग सुने, वेद माने वह ज्ञान है, ज्ञान का श्रवण मनन और निधिध्यासन करना आरंभ कर देवे, वह व्यक्ति कौन है? विप्र है। अब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचान जावे, मैं वास्तव में शरीर नहीं बल्कि ब्रह्म ही हूं, जो ऐसा जान जावे वह व्यक्ति क्या होता है? ब्राह्मण ही होता है। तो मैं तो सोचता हूं प्रेमपुरी में आने वाले लगभग लगभग सभी लोग क्या होंगे? नहीं, हम ब्राह्मण है भाई। मारपीट तो आप लोग करते नहीं, करते हो? ये छत्री तो हो नहीं सकते हो। अर्थ के प्रति भी ज्यादा महत्व तो है ही नहीं। हाँ, अर्थ की इतनी आवश्यकता तो है ही कि जितने में पेट पालन हो जाए उतना तो सबको करना ही पड़ेगा। तो जिसकी देखो, समाज में तीनों की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, मैं बता रहा हूं। आप अपने घर में भी जब बच्चे को पढ़ाते हो क्या बन जाते हो? ब्राह्मण। और जब बेगान होता ना, बेगान लेकर के मच्छर मारते हो तो क्या बन जाते हो? क्षत्रिय। नहीं बनते हैं भाई, दुश्मनों से रक्षा कर ले हो, नहीं कर ले हो तो इसमें क्या बन गए? क्षत्रिय। और जब थोड़ा रोजी रोटी के कमाने के लिए निकलते हो तो क्या बन जाते हो? वैश्य। और जब सफाई उफाई करना शुरू कर देते हो तब क्या बन जाते हो? शुद्ध। चारों वर्ण अभी आपके जीवन में नहीं है, लेकिन ये समझ लेना कि 6 घंटे सोने में चले गए। 6 घंटे किसमें गए? उसमें तो आप कुछ हो ही नहीं, न ब्राह्मण हो न क्षत्रिय हो न वैश्य हो न शूद्र हो। तो 24 में से 6 घंटे निकाल दो, कितना बचा? 18। 18 को 4 भागों में बांट लो तो क्या हो जाएगा? 3.5 घंटे। अब मान लो कोई व्यक्ति 8 घंटे ब्राह्मणत्व का काम कर रहा है तो उसको ब्राह्मण मान लो। लेकिन 8 घंटे में अभी 18 घंटे है नहीं, 18 घंटे, 18 में कितना बचा? 10। और 10 में 3-3 घंटे और काम कर लिया तो वो उस काम को गौण माना जाएगा। जिसके जीवन में प्रधान रूप से जो काम करता है वह व्यक्ति उस वर्ग वाला है। लेकिन सोचे कि हम क्षत्रिय और वैश्य बिना बने पूरे के पूरे ब्राह्मण बन के काम चल सकते हैं, तो ब्राह्मण के बिना ब्राह्मण पूरी तरह होकर के काम चलने वाला है ही नहीं। कभी न कभी क्षत्रिय भी बनना पड़ेगा और कभी न कभी वैश्य भी बनना पड़ेगा। भाई नहाते हैं तो क्या बन जाते हैं? कितने कीड़े मकोड़े ये सब साफ करते नहीं करते हैं तो उसमें आप क्या बन रहे हैं? क्या आपको दया आती क्या? किसने एक कीड़े बेचारे कहाँ जाएंगे, सर में जुए पड़ी है वो बेचारी मर जाएंगी, उनको हटाने के लिए आपको छत्री बनना पड़ता है नहीं पड़ता है, तो आपको छत्री भी बनना पड़ेगा वैश्य भी बनना पड़ेगा, लेकिन जीवन में प्रधान रूप से आप कौन सा काम कर रहे हो। तो प्रधान रूप से प्रेमपुरी वाले क्या काम करते हैं, ब्राह्मणत्व का, सुबह 7:30 बजे किसको नहीं सोना अच्छा लगता है, और 7:30 बजे यहां आने के लिए आपको 6:30 बजे तैयार होते हो, है नहीं, और 6 बजे से प्रेमपुरी प्रेमपुरी सत्संग 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 शुरू हो जाता है, और जब तक जाते हो 9:30 बजे फिर शाम को, फिर 24 घंटे में कम से कम 8-10 घंटे तो यूं ही चिंतन बीतता है। तो आप सब लोग क्या हो गए, ब्राह्मण। हाँ, थोड़ा छत्री वैश्य का काम करना पड़ता है, कर लो, उसमें उसकी प्रधानता है ही नहीं, तो ये ब्राह्मणत्व है। असली ब्राह्मण बन जाओ, असली ब्राह्मण कौन है, जाति अभिमानी नहीं बल्कि क्या है, अपने स्वरूप को जो अच्छी तरह जान लाए वह कौन है, असली ब्राह्मण। मैं ब्रह्म रूप हूँ, चैतन रूप हूँ, आनंद रूप हूँ, यह अपने आप को जाने। तो मैं जड़ नहीं, मैं क्या हूँ, चित्त स्वरूप, अतः चैतन्य ही मेरा स्वरूप है, चैतन्य ही सारा संसार इदंत या जो भी दिख रहा है वह सबके सब क्या है, जड़ है। उस जड़ को सत्ता देने वाला मैं हूं, जिसकी सत्ता से इस सारे संसार में स्फुरंगा हो रही है। स्फुरंग माने क्या हुआ, हिलना डुलना बोलना चलना व्यवहार करना, वह किसकी सत्ता से हो रही है, उस चैतन्य की सत्ता से हो रही है। यदि वह चैतन्य न होवे तो हम आंख की एक पलक भी बंद कर सकते हैं क्या, जी बाहर निकली है तो अंदर कर सकते हैं क्या, अथवा गर्दन हिला सकते हैं क्या, कोई भी स्फुरंगा यदि हो रही है तो किसकी सत्ता से, उस चैतन्य की सत्ता से। वह चैतन्य कौन हूं, मैं तो हूं, और वो स्फुरंगा चाहे किसी भी रूप में हो उससे क्या फर्क पड़ता है। भाई देखो, जब कोई मरने वाला होता है, कौन मरने वाला होता है, तो आप लोग क्या कहते हो, पहले तो मैं दिख रहा हूं ना, अथवा मतलब आंख से स्फुरित हम पहचानते हैं, हाँ दिख रहे हो, फिर सुन रहे हो ना, मैं राम राम बोल रहा हूं, कान में जाकर चिल्लाते हो, सुनाई दे रहा है, कान के रूप में भी स्फुरंग किसका हो रहा है, मेरे ही हो रहा है। इतना भी न आवे तो क्या देखते हो, नाड़ी, यदि नाड़ी में धड़कन चल रही है तो धड़कन को भी करने वाला कौन है, वह चैतन्य है। यदि वह चैतन्य न होवे धड़कन चलेगी क्या, अथवा श्वास देखते हो, श्वास चल रही नहीं चल रही है, यदि श्वास भी चल रही है तो श्वास को भी चलाने वाला, नहीं तो श्वास तो जड़ है नहीं, हवा तो क्या है, जड़ है। उस जड़ में आने जाने की जो गति धौंकनी सुबह से शाम लगी हुई है, उस गति को भी चलाने वाला कौन है, वह चैतन्य है। तो हे शिष्य, तुम तो वह चैतन्य रूप हो, नित्यमेव स्फुरत रूप, तेरा रूप हमेशा स्फुरित ही होता रहता है, जहां जहां जिस जिस रूप में रहता है तेरी सत्ता का भाव होता ही नहीं है। स्फूर्त मूर्ते तव, तू तो स्फूर्ति की साक्षात स्वरूप ही है, तू है तो कुछ न कुछ गति, कुछ न कुछ उथल पुथल, कुछ न कुछ शरीर में क्रियाएं, प्रकृति में क्रियाएं कुछ न कुछ होती रहती हैं। अब देखा जाए पृथ्वी चल रही नहीं चल रही है, कैसे, अब तो मैं भूल गया, उसमें जीके में याद भी किया था, इतने किलोमीटर प्रति घंटे से घूम रही है, और एक लट्टू की भांति घूम रही है, यूं यूं, मतलब अपनी धुरी पे 24 घंटे में एक बार, और एक साल में कहां पूरी सूर्य के चारों तरफ घूम लेती है। अब तो पृथ्वी स्वयं में जड़ है कि चेतन है, लेकिन इसके भीतर भी जो घूमने की शक्ति दे रहा है वह कौन दे रहा होगा। हे शिष्य, तुम चैतन्य स्वरूप हो, तेरी स्फूर्ति का भाव कभी, अरे तेरी स्फुरंगा इस शरीर में नहीं होगी, अरे भाई सीधी है, तेरी स्फुरंगा कान से नहीं होगी, कान से सुनना बंद होगा तो आंख से तेरा स्फुरंग हो रहा है, पलकों से तेरी स्फुरंग हो रही है, श्वासों से तेरा स्फुरंग हो रहा है, खून के प्रवाह के रूप में स्फुरंग किसका हो रहा है, तेरा ही हो रहा है। इन स्फुरंगों को देख करके तेरे स्वरूप को हम पहचान लेते हैं कि तुम इन सब के रूपों में जहां भी जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जिसकी सत्ता से सब कुछ चल रहा है, उस सत्ता वाले को हम जानते ही नहीं हैं, हम बस क्रिया में ही उसके उलझ जाया करते हैं। तो तुम इस स्फूर्त की मूर्ति हो, तव एवयम, ये तुम्हारी ही स्फूर्णा है जो कुछ हो रही है। काचिद स्फूर्ति इदम जगत है, यदि तू स्फुरंग रूप नहीं होता तो बताओ किसकी सामर्थ्य थी कि जो इस जगत को जरा सा भी परिवर्तित कर सकता। हर पल यह जगत परिवर्तित हो ही रहा है, तो इस जगत में स्वयं परिवर्तित होने की क्षमता है ही नहीं। इसको श्रुति भी कहती है, यद एस आकाश आनंदो न स्यात् को ही एव अन्यात कह प्राण्यात। यह जो आकाश रूप यदि आत्मा न होता, आनंद न होता, भला किसकी सामर्थ्य थी कि एक श्वास भी ले अथवा निकाल सकता है। तो जितनी भी क्रियाएं हैं, सारी क्रियाएं किसके कारण हो रही हैं? उस चैतन्य के ही कारण हो रही हैं। और तुम वही चैतन्य रूप हो, तो तुम्हारी व्यक्ति इस शरीर में होवे अथवा किसी भी शरीर में होवे, तेरी स्थिति हमेशा नित्य ही बनी रहेगी, तेरा कभी अभाव होने वाला है ही नहीं। कहो महाराज जी, ये तो बात ठीक है, मतलब सारी क्रियाओं का आधार वह आत्मा है, ये समझ में आई। हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, पलकें झपका रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, खून प्रवाहित हो रहा है, अब कोई भी व्यक्ति कैसा भी काम कर रहा हो, कोई नाच रहा है, कोई शांत बैठा है, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई भी, कोई धन कमा रहा है, कोई कुछ भी काम कर रहा है, शेर मांस खा रहा है, पक्षी हवा में उग रहा है, लेकिन जो भी क्रिया का आधार है सब कौन है? तो इन सब के रूपों में आप अपने रूप को नहीं देख सकते क्या? अपने आप को नहीं पहचान सकते क्या? क्योंकि भाई शरीर तो हम नहीं है, लेकिन शरीर के भीतर जो सत्ता देने वाला है, शरीर के भीतर जो सत्ता देने वाला है, जिसकी सत्ता से सारे संसार के कार्य चल रहे हैं, स्फुरित हो रहे हैं, वह सत्ता मेरी ही अपनी सत्ता है। तो सबके रूप में किसको देख लो? नहीं देख सकते। अरे पक्षियों के रूप में देखो, मैं ही तो उग रहा हूं, उगने की शक्ति उसमें कौन दिया है? मेरी शक्ति से उग रहा है, मैं वह चेतन सत्ता हूं, उसी चेतन सत्ता से, और वह चेतन सत्ता व्यापक है। इसको उदाहरण एक मैं देता हूं, वही आजकल सोलर एनर्जी का दे रहा हूं। कौन सी ऊर्जा? सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। वो बताओ सब जगह है कि नहीं सब जगह है? लेकिन अब कैलकुलेटर यहां रख दो या यहां रख दो, या मोबाइल जो सोलर एनर्जी से चार्ज होने वाला, वो यहां रखो या वहां रखो, जहां जाएगी ऊर्जा उसको मिलती जाएगी। अब ऊर्जा न होवे उसमें तो क्या कोई बटन चल सकता है क्या? तो हमारी दुनिया का कोई भी बटन नहीं चल सकता है जब तक उस चैतन्य की स्फुरंगा न होवे। तो आप उसके कौन सा बटन से क्या दब रहा उसको मत देखो, कौन व्यक्ति काम क्या कर रहा उसको मत देखो, उस काम के भीतर शक्ति देने वाले उस आधार को देख लो। अरे अपराधियों को भी जब पकड़ते हैं ना, तो शूटर को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। कोई व्यक्ति किसी गोली मार देता है तो ठीक है, पुलिस वाला पकड़ता तो है किसको? उस गोली मारने वाले को। लेकिन गोली मारने वाले को पकड़ करके उसको दंड नहीं देता कि दंड देता है, उसको पकड़ करके उस शूटर को किसने भेजा है, उसके भीतर सत्ता किसकी है, उसको पकड़ता ही नहीं पकड़ता। तो हम उस शूटर से हमारा कोई मतलब नहीं है, इन कैप्सूल से, कैप्सूल बोलते हैं ना इसकी भाषा में, कैप्सूल ही बोलते हैं, ऐसे बड़े कैप्सूल घूम रहे हैं जिनको पता ही नहीं मेरे को कौन कहां भेज रहा है, उनको पता ही नहीं, बस उनका काम ही दहशत फैलाना। तो लेकिन उनको पकड़ के मार भी दोगे ना तो कुछ होने वाला? वो हजार और पैदा हो जाएंगे। लेकिन जिसकी प्रेरणा से वो सब काम कर रहे हैं, जब तक उसको पकड़ोगे नहीं तब तक ये क्रियाएं बंद नहीं होंगी। ये तो उदाहरण के तौर पर है, लेकिन यहां उस आत्मा को पकड़ लो, उस आत्मा को जान लो, तो फिर हमारी ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, ये भला है, सारी वृत्तियां हमारी समाप्त हो जाएंगी और हम अपने उस चैतन्य रूप में स्थित हो जाएंगे। आगे भास्वतो मम भामात्रम इति ज्ञाते भ्रमे गते
क्व द्वितीय क्व संसार क्व माया तत्कृतम किमु भास्वतो मम,
प्रकाश स्वरूप मेरा जो स्वरूप है वह भामात्रम भा ही है, प्रकाश ही मेरा स्वरूप है, ज्ञान ही मेरा अपना क्या है स्वरूप है। क्योंकि सारी सृष्टि स्वरूप होने का मतलब क्या हुआ, जो मेरा अपना स्वरूप होता है ना वह कभी बाधित नहीं होता है। देखो मेरा मनुष्यपना बाधित हो जाता है, नहीं होता। अभी हम तो क्या है, मनुष्य हैं, रात में सो गए, अब बगल में कुत्ता आके सो गया, बताओ मनुष्यपना रहेगा क्या? यदि उस समय मनुष्यपना होता तो कुत्ता साथ सोया हुआ उसको तुरंत क्या करते, भगा देते, नहीं भगाते थे। लेकिन उसमें हमें अपने मनुष्यपने का भी बाध वो बोध नहीं हो रहा है, बता हमारा मनुष्यपना बाधित तो हो गया है। एक क्षण में तो है और दूसरे क्षण में वह गायब हो जाता है, लेकिन जो अपना स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, वह कभी बाधित तो होता नहीं है। वह भा मात्रम, वह प्रकाश मात्र है। कैसा है? अब देखो प्रकाश माने हुआ जानना, प्रकाश का अर्थ हम लोग कहते हैं लाइट, लाइट नहीं तो कई लोग ध्यान करते हैं तो कहते महाराज जी हजार सूर्यों का प्रकाश मैं देख रहा हूं। अरमन महर्षि के सामने कोई भगत गया, कहा महाराज जी ध्यान में मैं हजार सूर्यों के प्रकाश को देखता हूं। रमन महर्षि सीधे कहते हैं भाई एक सूर्य को भी प्रकाश देखने की सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर, एक तो हजार सूर्य को देख सकते हो। अरे भाई ये जो प्रकाश को जो देखने वाला है, प्रकाश आत्मा नहीं है, प्रकाश को भी जो प्रकाशित करने वाला है वह कौन है, आत्मा है। लेकिन उस प्रकाश को कोई देखता ही नहीं, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। स्वामी जी का एक दृष्टांत आता है ना अपने यहां त्यागमूर्ति जी महाराज का, तो कहते हैं कि ज्यादातर प्रवचन में वो अध्यक्ष बनते थे, क्या बनते थे, बड़े संत थे तो अध्यक्ष ही बनते हैं। महाराज जी कहते थे सीधे भाई अध्यक्ष बनना मतलब जिसको बोलने का समय न देना हो उसको क्या बना दो, अध्यक्ष बना दो। क्योंकि 9 बजे तक यदि आपका प्रवचन का टाइम है तो सारे महात्मा 2, 4, 5 में ज्यादा ही ले जाते हैं, महात्माओं को भी थोड़ा बोलने की क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। नहीं 5 मिनट टाइम दोगे तो 10 मिनट खींच ले जाएंगे, लगता सारा घोट के भी पिला दे। लेकिन जबकि जिसको जितना समय दिया जाए असली वक्ता वही होता है कि अपने पूरे प्रवचन को पूरे भाव को उतने ही मिनट में संयोज करके रख देवे। भगवान शंकराचार्य का देख लेना, कोई भी ग्रंथ देख लेना, बड़ा से बड़ा ग्रंथ है उपदेश शास्त्री सबसे बड़ा है, कौन सा, उपदेश शास्त्री, छोटा छोटा ग्रंथ है, देखा जाए आत्मबोध, आत्मबोध अथवा तत्वबोध, ये सब क्या है, छोटे ग्रंथ है। यहां तक एक श्लोक की ग्रंथ भी है भगवान शंकराचार्य का, एक श्लोक का ग्रंथ है मात्र, 5 श्लोक का ग्रंथ है उपदेश पंच रत्नम। लेकिन जीवन के पूरे सार को उन्होंने मात्र कितने श्लोक लिखा है, 5 श्लोक में लिखा है, और उसी जीवन के सार को उन्होंने 1000 श्लोक में लिखा है। अब सोचे ना, ये वक्ता की क्या होती है, कुशलता होती है, वह अपने विषय को 1 मिनट में भी बता सकता है, 10 मिनट में बता सकता है, और 10 साल में भी उसको व्याख्या के रूप में बता सकता है। तो महाराज जी अध्यक्ष पद पे थे, और जैसे 9 बजता है या रात होती है तो सब लोग क्या करते हैं, उठ के जाना शुरू कर दिए। तो कहा भाई चलो अभी आप लोगों ने आत्मज्ञान सुना है, अब आत्मज्ञान का अनुभव लो, उस आत्मा का साक्षात्कार जिसको करना हो वो लोग बैठ जाए, आज जिसको ज्ञान लेकर के केवल जाना हो चले जा सकते हैं। जो बाहर गए थे वो भी क्या किए, वापस जाके बैठ गए, किसको नहीं आत्म साक्षात्कार चाहिए। तो कहा भाई देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा बताओ, क्या दिखाई दे रहा बताओ, हाँ तो क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले क्या देख रहे हो आप लोग, आपकी दृष्टि सबसे पहले कहां जा रही है, तौलिया पे ना, लाल रंग, और कोई कहेगा नीला रंग, कोई कहेगा धागा, कोई कहेगा कपास, आप लोग यही देख रहे हो ना। तो कहा भाई यदि प्रकाश न होवे तो क्या कोई वस्तु देख सकते हो क्या, तो जिस प्रकाश की सत्ता से ये वस्तु दिख रही है वह प्रकाश किसी को दिख ही नहीं रहा, बताओ इतने लोग बता रहे हो, कोई व्यक्ति नहीं बता रहा कि मैं प्रकाश को देख रहा हूं, बोला भाई आप लोगों ने। आप लोगों ने लाल रंग देखा, पीला रंग देखा, नीला रंग देखा, लेकिन जिस प्रकाश में ये लाल पीला रंग दिख रहा है वह प्रकाश किसी को दिखाई दिया क्या? यदि वह प्रकाश न होता तो लाल पीला नीला दिखाई देता क्या? तो इस प्रकाश का भी जो प्रकाशक है वह आत्मा है, उसको तुम जान लो। लेकिन उसको हम समझे, आप लोग घर में आए होंगे, अभी घर से शीशा देख के आए थे ना? क्यों भाई? शीशा देखा था तो आप थे और सामने क्या था? शीशा था। और शीशे के पीछे क्या थी? आपकी अपनी तस्वीर। लेकिन आपने देखा किसको? शीशा देखा का आपको तस्वीर दिखाई दे रही थी, सही बताना, झूठ नहीं बोलना। शीशा नहीं दिखा, वो तस्वीर जिस शीशे पे टिकी हुई है वो तस्वीर का अधिष्ठान है कौन है? शीशा है। यदि शीशा ना होए तो कल्पित तस्वीर दिखाई नहीं देगी, लेकिन कल्पित तस्वीर तो दिखाई दे गई, लेकिन सत्य शीशा किसी को दिखाई दिया ही नहीं। उसी प्रकार से अपनी आत्मरूपी सत्ता पर यह कल्पित संसार टिका हुआ है, लेकिन वो सत्ता किसी को दिखाई, जिसे अभी प्रकाश न होवे तो संसार की कोई वस्तु दिखेगी क्या? लेकिन वह प्रकाश किसी को दिखता है ही नहीं। अब प्रकाश का भी प्रकाशक जो अपना स्वरूप है, यदि वह न होवे तो प्रकाश अंधकार वस्तु कुछ भी दिखाई देगा नहीं। लेकिन हमारी आंखें वाह नाम रूपों को देखकर कितनी चौंधिया गई हैं कि सत्ता हमें दिखाई देता ही नहीं है। हम इसको कई बार और उदाहरण में समझाते हैं। अखबार है, अखबार पे जितनी भी तस्वीरें बनी हुई हैं, उन सारी तस्वीरों का अधिष्ठान कौन है? कागज है। लेकिन जिस समय हम अखबार पढ़ते हैं, अखबार में बनी हुई तस्वीरों को देखते हैं, अब कागज दिखता है कि तस्वीर दिखती है? कागज भूल जाता नहीं? भूल जाता है। अब तस्वीर में इसे खो जाते हो कि कभी पांव छूना शुरू कर देते हो, कभी उस तस्वीर को देख करके आपके भीतर कामना पैदा हो जाती है, कभी उस तस्वीर को देख करके उस तस्वीर को छूना शुरू कर देते हो, लेकिन छूते किसको हो? तस्वीर को, कागज को। लेकिन मानते किसको हैं? बस यही हमारी भ्रांति, और कोई भ्रांति नहीं है। तो सारे संसार का जो प्रकाशक है वह कौन है? आप ही हो। यदि अपने उस प्रकाश स्वरूप को जान गए तो सारा भ्रम ही समाप्त हो जाएगा। ज्ञाते तत्वे, ये तत्व का ज्ञान हो गया तो भ्रमे गते, आपके जीवन का सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा। तो क्वा द्वितीय, फिर दूसरा कौन रहेगा बताओ? यदि आपने अखबार के स्वरूप को जान लिया तो बताओ इसमें ये लड़का है, ये लड़की है, ये भगवान है, ये चांडाल है, ये भेद बुद्धि रहेगी क्या? सबके रूप में क्या दिखाई दे जाएगा? अखबार ही तो कागज दिखेगा। तो क्वा द्वितीय, फिर दो की सत्ता रहेगी नहीं, सत्ता किसकी बचेगी? एक की सत्ता बचेगी। क्वा संसार, और दो का नाम ही संसार है, और जब दो बचे ही नहीं तो संसार भी बचेगा नहीं, और संसार ही नहीं बचा तो क्वा माया, ये माया उस संसार का आकर्षण भी कहां बचा रहेगा? क्योंकि माया के कारण ही, अज्ञान के कारण ही संसार का आकर्षण बना हुआ है, और जब संसार बचा नहीं तो क्वा माया, वह माया भी, वह आकर्षण भी कहां बचा रहेगा? यदि वो नहीं बचा रहा तो उस माया का आवरण और विक्षेप, माया के द्वारा किया हुआ आवरण और विक्षेप भी, जब संसार ही नहीं बचा, राग द्वेष ही नहीं बचा, तो राग द्वेष के कारण ही तो हमें क्या मिलता था? विक्षेप होता था। अब विक्षेप, कामना, लोभ, क्रोध, मोह सब के सब अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब तक भास स्वरूप, अधिष्ठान स्वरूप, उस परमात्मा का बोध, अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक यह संसार तो इसी रूप में दिखाई देता रहेगा, और किसी न किसी से राग, और किसी न किसी से द्वेष करते रहोगे। सबको भाई एक रूप देखो तो। अब कहो महाराज जी मैं कैसे प्रकाश स्वरूप हूं? आप कह सकते हो कैसे हो? हम तो सोते वक्त अंधकार में डूब जाते हैं। अरे भाई अंधकार में नहीं डूबते हो, अभी सारे संसार को प्रकाशित आप कर ले नहीं कर ले मुझे बता दो। हमें बताते हैं संसार को जिस रूप में आप प्रकाशित करते हो, संसार आपको उसी रूप में दिखाई दे रहा है, ये भी बता दो। एक व्यक्ति धनी है, अब उस धनी व्यक्ति को सब धनी देखते हैं क्या? ध्यान देना, धनवान व्यक्ति उसको क्या देखेगा? गरीब देखेगा, उससे गरीब व्यक्ति उसको क्या देखेगा, धनी देखेगा। कोई व्यक्ति धन के साथ साथ उसमें दुख देखेगा, अरे आज बहुत धन है लेकिन किस काम का, सबसे दुखी इंसान है कौन, ये आदमी दुखी दिख रहा है। कोई व्यक्ति और किसी भाव, कोई व्यक्ति कपटी देखेगा, कोई व्यक्ति नंबर क्या आजकल काली ब्लैक मनी, ब्लैक मनी लेकर के इतना दूसरे का खून चूस के धनी बना है। हर व्यक्ति के भीतर उस व्यक्ति को प्रकाशित करने की क्षमता अलग है कि सब एक ही रूप में देख रहा है। तो जो व्यक्ति जिस रूप में वस्तु को प्रकाशित करता है वह वस्तु उसको उसी रूप में दिखाई देती है। तो जितनी प्रकाशित वस्तु है वह सब के सब प्रकाशक के अधीन है कि प्रकाशक से अलग है, बोलो भाई। तो ये सारा संसार सबको एक ही रूप नहीं दिखाई दे रहा है, सबको ये सारा संसार क्या दिख रहा है, अपने अंतःकरण की वासनाओं के अनुसार सबको अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी व्यक्ति जिस रूप में इस प्रकाश को देख रहा है, इस संसार को देख रहा है, उस प्रकाश की सत्ता में कोई भेद है ही नहीं। वह प्रकाश मेरा ही अपना क्या है, स्वरूप है। वह प्रकाश मेरा ही अपना स्वरूप है। तो जागृत संसार को आप देख रहे हो, अच्छा स्वप्न संसार को देखने वाला प्रकाशित करने वाला कौन है, आप ही को दूसरा है, कोई पड़ोसी है। आपके सपने को कौन देखता है, आप ही देखते हो, दूसरा कोई देखता है। अच्छा सुसुप्ति में धन, सुसुप्ति में उस अज्ञान को प्रकाशित करने वाला, अथवा मुझे कुछ पता नहीं चला, अथवा मैं सुख से सोया, उसको देखने वाला कौन था, मैं ही तो था। और मुझे प्रकाशित करने वाला कौन है, आपको मैं हूं अथवा नहीं हूं, आप लोग देख के बताओ, क्या कभी आपको ऐसा संशय होता है क्या, भाई मैं स्वयं प्रकाश हूं, मैं देखो छू करके देख करके आवाज को सुन करके कोई आया कोई गया, दूसरे को प्रकाशित करने वाला कौन हूं, मैं तो हूं, लेकिन मेरे को प्रकाशित करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं स्वयं प्रकाश हूं। इसलिए मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता, भाई देख कोई बताओ हम हैं अथवा हम है? नहीं है। कि कभी ऐसा पूछते हो, रात में सो जाओ छोटे बच्चे के साथ, तो माताएं टटोलती रहती हैं बच्चा है कि नहीं है, तो बच्चे को छू करके बच्चे की सत्ता का बोध करती हैं छू करके, लेकिन मैं हूं नहीं हूं कभी टटोल के देखे हो क्या, कि मैं कहीं नीचे तो नहीं ऊपर उतने, कभी ऐसा होता है क्या, हो सकता होता हो, क्यों नहीं होता, एक उदाहरण दूं उससे समझ लेना, हो सकता होता हो। माताएं जब बाजार जाती ना तो शीशा देख के जाती हैं, ठीक है ना, जब वापस आती ना तो फिर से शीशा देखती हैं। तो मैंने ऐसा सोचा, बहुत दिमाग लगाया कि जाते वक्त देखना तो अच्छा लगता है, ठीक है भाई बाहर जा रहा हूं तो बाल वाल ठीक है नहीं ठीक है, लेकिन जब लौट के आते हैं तो शीशे देखने की आवश्यकता क्या पड़ गई, नहीं समझ पाता मेरे को। तो हमें लगा है कि उन माताओं को हो सकता है कंफ्यूज हो जाता होगा, जो गई थी वही वापस आई, कहीं उसकी जगह दूसरी तो नहीं आ गई, ऐसा संशय होता है क्या, भले भले शीशा देखें लेकिन ऐसा कभी संशय होता, वो शीशा बाद में देखना है स्वभाव बन गया है, क्या बन गया है, स्वभाव बन गया है। अन्यथा ऐसा भूल करके भी कभी संशय नहीं होता है कि जो गया था वही वापस आया है अथवा वापस नहीं आया है। तो मुझे प्रकाशित करने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता है ही नहीं। आप इस सारे संसार को जिस रूप में प्रकाशित करोगे, सारा संसार आपके अधीन है या सारा संसार उसी रूप में प्रकाशित होगा। ऐसा ही बताऊं, मैं तो जैसे आप लोग कहते हो मोदी बहुत पावरफुल है बहुत दुखी है, हमका तो सबसे जड़ा हुआ इंसान होगा तो कौन होगा, बोलो भाई मोदी है कहां है, जब तक उसको जेट क्लास की सुरक्षा नहीं मिलेगी तो जा सकता है क्या, अकेले हमारी तरह घूम ले बीच पे घूम सकता है क्या, तो सबसे निडर तो कौन है, मैं हूं कहीं नहीं हूं घूमते हुए निकल जाता हूं, वो अकेले घूम के दिखा दे तो डरा हुआ आदमी कौन है, डरा हुआ आदमी वही होगा जिसको सुरक्षा की आवश्यकता होगी, और जिसको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी वह क्या होगा, निडर होगा कि नहीं होगा। तो कहने का भाव मेरा कोई है कि आप ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूं कि हम उनको इस रूप में प्रकाशित कर रहे हैं, दूसरा उनको सबसे पावरफुल के रूप में प्रकाशित करेगा, अरे इस दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति है, लेकिन हमें तो लगता है खाना ही दो रोटी
अब जहां इतनी मेहनत करता है और उस मेहनत का फल भी क्या मिलता है, 50 लोग तो गाली देते हैं, 35-40 लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं और क्या करते हैं, लेकिन गाली देने वाले क्या हैं। अब दिल्ली में देखो 70% कितने गाली दे दिए बताओ, उठा के बाहर कर दिए, तो कहें कितना हम मर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, लोग उसको समझते नहीं है। तो कहने का भाव मात्र इतना है कि हम किसी भी व्यक्ति को जिस रूप में देखेंगे वह वस्तु हमारे अपने अधीन है, उसी रूप में दिखाई दे जाती है। चलो भाई टाइम हो गया, क्या करें। अब एक और प्रश्न है, इस पर विचार तो कल ही करेंगे लेकिन उच्चारण कर लेंगे। गत्वम कर्तित्वम भोक्तित्व जग चैतन्य दृष्टय स्फुरांगी स्वकीयानी मगैर्भूत्वा विलोकय। कहते देखो यदि आप जग और चैतन्य का यदि संबंध हो गया, किसका संबंध, जग और चैतन्य का संबंध हो गया, तो जग में जैसे बुद्धि का संबंध हो गया, ज्ञान इंद्रियों का संबंध हो गया, ताप में ज्ञत्व आ जाता है, क्या जाता है, जानने वाला। यदि कर्म इंद्रियों का संबंध हो गया ताप में कर्तृत्व हो जाता है, अब भोग क्रिया के फल का संबंध हो जाता है ताप भोक्ता कहलाने लगते हो। लेकिन इस स्फुरांगी स्वकीयानी चाहे ज्ञातृत्व रूप में होवे, चाहे कर्तृत्व रूप में होवे, चाहे भोक्तृत्व रूप में होवे, ये सारे रूप में तुम्हारा ही अपना स्फुरंग हो, इसलिए मगई भूतवा तुम मगई होकर के क्या हो जाओ, मगई माने प्रकाश स्वरूप होकर के विलोक उसको तुम देखो। जैसे एक उदाहरण है, एक बिजली है, बिजली का संपर्क बल्ब से हो गया तो क्या देगा, प्रकाश देगा। यदि बिजली का संबंध प्रकाश माने ज्ञत्व हो गया, प्रकाशकत्व तो हो गया, किसके भीतर, बिजली के भीतर, उसी बिजली का संबंध पंखे से हो गया तो क्या देगा, हवा क्रिया। तो यदि कर्म इंद्रियों के साथ संबंध हो गया तो उसी में क्या हो जाएगा, क्रिया तो आ जाएगा। और उसी बिजली का संबंध, उसी बिजली का संबंध और किसी यंत्र से हो गया तो वह उस रूप में दिखाई देगा नहीं देगा। तो कर्तित्व भोक्तित्व ज्ञातित्व यह सब के सब किसके अधीन है, अंतःकरण के अधीन हो गया तो भोक्तित्व हो जाता है, कर्म इंद्रियों के अधीन हो गया तो कर्तित्व हो गया, ज्ञान इंद्रियों के अधीन हो गया तो क्या हो गया, ज्ञातित्व हो गया। लेकिन इन तीनों को जो सत्ता देने वाला जो मणि है, आत्मरूप है, तुम वही होकर के तीनों के रूप में अपने आप को देखो, कर्ता के रूप में भी, भोक्ता के रूप में, अज्ञाता के रूप में भी, किसको देखो, अपने आप को देखो। आगे का चिंतन कल करेंगे, लेकिन आत्मा की पहचान बताई जा रही है, अब सब के रूप में किसको देखना है, अपने आप को देखना है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।